प्यारे बच्चों नमस्कार। हम दीवानों की हस्ती इस कविता के मैंने पहले भी बताया है कि दो मॉड्यूल बनाई हैं। पहले मॉड्यूल में हमने दीवानों की हस्ती कविता के तीन पद पढ़े, उनकी व्याख्या, भावार्थ और शब्दार्थ के विषय में सुना और पढ़ा। कवि परिचय के साथ साथ कविता के सार पर भी ध्यान दिया गया था उस समय। अब मैं कविता का सार और कवि परिचय आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोबारा बताने का कोई औचित्य नहीं। अब इस कविता के बाकी जो तीन पद बचे हुए हैं, उन तीनों पदों का हम आदर्श और अनुकरण वाचन करते हुए उनका भावार्थ, व्याख्या एवं शब्दार्थ का गहन अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने पहले बताया कि आप इसमें तीन के बाद चौथा जो पद संख्या है उस पद का मैं आदर्श वाचन कर रहा हूँ। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से पिए चले। शब्दार्थ देखिए, छक कर मन भरकर जी भरकर, सुख दुख के घूंट जीवन के, सुख दुख के अनुभव, ये इनके कठिन शब्दों के अर्थ हैं। बाकी इस काव्यांश में कोई कठिन शब्द नहीं है। अब इसके मैं व्याख्या और भावार्थ पर गौर करते हुए आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह कविता भगवती चरण वर्मा ने लिखी और यहाँ पर दीवानों की, जो स्वतंत्रता के जो सेनानी हैं, उनके मन में जो देश को आज़ाद कराने की जो दीवानगी है उनके बारे में बताया है। कवि ने बताया है कि ये दीवाने, किसके दीवाने, देश को आज़ाद कराने के दीवाने, जो देश को जंजीरों से मुक्त कराना चाहते हैं, जब वो संघर्ष करते करते इस दुनिया के लोगों से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो उनसे कुछ अपने मन की बातें बताते हैं, उनके विचारों और भावों को सुनते हैं, फिर उनके मन के भावों और विचारों को सुन करके कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, लेकिन जी भर करके वे सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं। अनुभव क्या है कि जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो हमें उनके विचारों से अनुभव होता है, चाहे उन लोगों के लिए सुख हो या दुख हो। दीवाने सभी को समान भाव से देखते हैं, वे सुखों को देख करके ज़्यादा सुखी नहीं होते हैं, बहुत इतराते नहीं हैं कि बस हम तो बहुत सुखी हैं और दुख कभी आएगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति का नियम है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते हैं। दुखों को देखकर ज़्यादा रोते नहीं हैं, गिड़गिड़ाते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने वे उनका दर्शन इस बात को मानता है कि सुख और दुख जीवन में स्थायी नहीं है। वे सुख दुख के भाव को एक समान सहन करते करते ही हैं और दुनिया के लोगों को भी यही संदेश देते हैं कि आप भी सुख और दुख को एक समान भाव से सहन करो। सुख मिलने पर ज़्यादा इतराओ मत, दुख मिलने पर ज़्यादा रो मत, गिड़गिड़ाओ मत, क्योंकि जैसा हमारा मानना है कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है, तो ये प्रकृति का नियम है और ये चलता रहता है। ये जीवन में सुख दुख अस्थाई हैं, आते हैं और जाते हैं। तो इस काव्यांश में उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि हमारा जो स्वभाव है आपका भी वैसा ही होना चाहिए। पांचवा जो काव्यांश है उसका मैं अभी आपके सामने आदर्श वाचन करके सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, ले असफलता का भार चले। अब इसमें इस काव्यांश में कठिन शब्द जो हैं शब्दार्थ देखिए, भिख मंगो भीख मांगकर खाने वाले, स्वच्छंद स्वतंत्र आजाद उन्मुक्त, निशानी पहचान चिन्ह, उर्मिन हृदय, असफलता इच्छा अनुसार कामयाबी न मिलना। अर्थात किसी जो काम हमने शुरू कर रखा है उसमें सफलता हासिल न हो, ये इसके कठिन शब्द थे। इसके साथ अब इसका भावार्थ और व्याख्या समझिए। इस काव्यांश में कवि ने संसार को भिख मंगा कहा है। कैसा कहा है? भिख मंगा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि किसी को कैसा उसके आचार व्यवहार, उसकी प्रवृत्ति स्वभाव आदि के आधार पर ही कहा जाता है, क्योंकि इस संसार का स्वभाव नेचर प्रकृति ही ऐसी है कि वह दूसरों से लेना तो जानता है, लेकिन जब देने का समय आता है तो वह अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। अर्थात देना जानता ही नहीं है। यह बलिदानी वीरों को प्यार मोहब्बत यशोगान गाकर हौसले नहीं बढ़ा सकता कि ये देश के जो दीवाने हैं, देश को आज़ाद कराने के जो स्वतंत्रता प्रेमी दीवाने हैं, जो जान हथेली पर लेकर के घूम रहे हैं देश को आज़ाद कराने के लिए, जिन्हें न घर की चिंता है, न द्वार की चिंता है, न अपने किसी की चिंता है, जो मस्त मौले जीवन को जीते हुए कम से कम उनको प्यार दें, मोहब्बत दें और यशोगान गा करके उनका हौसला तो कम से कम बढ़ाएं। ये दीवाने सभी पर स्वतंत्र रूप से प्रेम लुटाते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच या प्रलोभन के अपना प्रेम लुटाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इतना सब करने के बाद भी वो समाज से संसार से क्या लेके जाते हैं? उनके हृदय के ऊपर एक पहचान चिन्ह छप जाता है, और वह पहचान चिन्ह किसका है, वह निशानी किसकी है, असफलता की। असफलता की निशानी क्यों है कि अत्यधिक संघर्ष करने के बावजूद भी वे अपने लक्ष्य, अर्थात उनका लक्ष्य क्या है, ब्रिटिश सरकार से देश को आज़ाद कराना, लेकिन वे आज़ाद नहीं करवा पा रहे हैं, अर्थात देश को स्वतंत्रता हासिल नहीं हो पाई है, जबकि उन्होंने इतना संघर्ष किया है। तो इस प्रकार से इस काव्यांश का भावार्थ और व्याख्या। अब जो अंतिम छठा पद संख्या 6 है, उसका आदर्श वाचन सुनिए, आप अनुकरण वाचन कीजिए, सहस्वर वाचन कीजिए, इस कविता को गा सुनते हैं। ये बहुत ही सरल, छोटी, और शब्द जो हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है, आप इसको गायन भी कर सकते हैं। यदि आप रियाज अभ्यास करेंगे तो ये आपको कंठस्थ भी हो जाती है। अब छठा पद है, अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसमें सबसे पहले देखिए पराया, पराया का अर्थ होता है दूसरा, अपना अपने सगे संबंधी, आबाद बसना, स्वयं अपने आप, बंधन बेड़ियां। तो ये सब इसके कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। भावार्थ समझिए, दीवाने वीर कहते हैं कि हमारे लिए इस दुनिया में रहने वाले विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों, संप्रदायों के लोग एक समान हैं, हमारी नज़र में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, इसलिए वे सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संसार वालों, खूब लदो बदो, फूलो फलो, खुशी के साथ जीवन यापन करो। उनका मानना है कि इस दुनिया में बसने की इच्छा से, इस दुनिया में बसने की इच्छा से लोगों से नाते रिश्ते बनाकर अपना और पराये के बंधन में बंध गए थे, अपने और पराये के बंधन में बंध गए थे। देखिए यहाँ पर कवि ने कविता में विरोधाभास दिखाया है, यहाँ विरोधाभास क्या है कि पहले तो उन्होंने कहा कि हमारा अपना और पराया नहीं है, हम किसी बंधन में नहीं बंधे हैं, लेकिन यहाँ इन पंक्तियों में उन्होंने लिख दिया कि हम नाते रिश्ते के बंधन में, अपने सगे संबंधियों के रिश्ते में बंध गए थे। तो ये यहाँ पर कवि ने विरोधाभास को दिखाया है। अब उन सब रिश्ते नातों को तोड़कर स्वयं बलिदान की राह पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इस राह पर चलने के लिए किसी व्यक्ति ने हमें प्रेरित नहीं किया, हम अपनी इच्छा से इस राह पर चले और इस राह को अपनाने के लिए हम स्वयं आगे बढ़े हैं, किसी ने हमें प्रेरित नहीं किया। ये हमारे मन का एक धर्म है या मन की इच्छा थी कि हमने इस काम को अपनाया, और वो काम क्या था, देश को आज़ाद कराने का बीड़ा जो उठाया है। लेकिन अंत समय तक वे भी उनके मन में एक उर्मि असफलता की जो निशानी, जो पहले पढ़ा कि वो देश को आज़ाद कराने में सफल नहीं हो पाए, संघर्ष करते करते उनका समय निकल चुका था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये दूसरे मॉड्यूल के जो तीन काव्यांश थे, उन काव्यांशों का आदर्श वाचन, शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्या मैंने आप सबको पढ़ करके सुनाई। देखिए, भावार्थ व्याख्या करते समय आप शब्द को ध्यान से देख करके उसको अपने शब्दों में कि कवि इस कविता के द्वारा क्या कहना चाहता है, इस पंक्ति में कवि ने क्या लिखा है, इसको देख करके ही आपने उसके भाव को लिखना है, उसके भाव को लिखना है। और मैंने इसके लिए जो वर्कशीट और लघु उत्तर MCQ के लिए वर्कशीट तैयार की है, उसको आप ध्यान से करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये कविता पाठ, भावार्थ, शब्दार्थ, वाचन ये पसंद आया होगा। और इस के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।